नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल NCLT में 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 1 पद न्यायिक सदस्य का एवं 2 पद तकनीकी सदस्यों के हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में ये जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 23 जनवरी 2023 है। NCLT में पदों के लिए आवश्यकता ये है कि आवेदक की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। NCLT की प्रधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी में और एक अन्य पीठ चेन्नई में स्थित है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की निकासी लगातार जारी रहने के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सपाट खुला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी की वजह से रुपये की बढ़त सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.84 पर खुला, फिर और गिरावट के साथ 82.86 के स्तर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले महज 1 पैसे की बढ़त दर्शाता है। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 82.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14% बढ़कर 104.32 पर आ गया। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.11% की तेजी के साथ $84.42 प्रति बैरल के भाव पर था। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट हुई। इससे पहले 2 दिन तक शेयर बाजारों में तेजी का रुख था। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 213.66 अंक गिरकर 60,713.77 अंक पर आ गया। व्यापक NSE निफ्टी 63.95 अंक टूटकर 18,068.35 अंक पर था। सेंसेक्स में इंफोसिस, बजाज फिनसर्व, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, विप्रो, ITC और इंडसइंड बैंक गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर टाइटन, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, NTPC, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा में बढ़त हुई। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो के बाजार नुकसान में कारोबार कर रहे थे। शंघाई और हांगकांग के बाजारों में तेजी थी। अमेरिकी बाजार भी मंगलवार को नुकसान में बंद हुए थे। पिछले कारोबारी सत्र में मंगलवार को BSE के 30 शेयरों वाले सूचकांक सेंसेक्स ने 361.01 अंक यानी कि 0.60% की बढ़त दर्ज की और कारोबार के अंत में ये 60,927.43 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 117.70 अंक यानी 0.65% बढ़कर 18,132.30 अंक पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.13% की बढ़त के साथ $84.44 प्रति बैरल पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 867.65 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। किया इंडिया ने अपनी नई किया EV9 कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV का टीजर जारी कर दिया है। इसके साथ कंपनी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च करने से पहले 2023 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जाएगा। इससे पहले किया मोटर्स भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV को किया EV6 को लॉन्च कर चुकी है। किया मोटर्स के इस EV9 कॉन्सेप्ट के डायमेंशन की बात करें तो ये 4,929 mm लंबी, 2,055 mm चौड़ी और 1,790 mm ऊंची इलेक्ट्रिक SUV है, जिसके साथ 3,100 mm का व्हील बेस दिया जाएगा। कंपनी इस SUV को ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। किया EV9 के डिज़ाइन की बात करें तो कंपनी इसमें फुल LED लाइटिंग का इस्तेमाल करने वाली है। इसके फ्रंट में Z डिज़ाइन वाली LED हेड लैम्प के साथ ब्लैक आउट पैनल दिया जाएगा। इसके फ्रंट में सिग्नेचर टाइटल नोज ग्रिल को दिया गया है। इसके अलावा नए डिज़ाइन का बम्पर और यूनिक डिज़ाइन वाली LED टेल लैम्प को जोड़ा गया है। फीचर्स की बात करें तो कंपनी EV9 कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV में ट्विन स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्पोकलेस फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, फुल डिजिटल डैशबोर्ड, एम्बियंट लाइटिंग, सेकेंड रो में कैप्टन सीट और फ्रंट में फुल एडजस्टेबल सीट्स को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले जून तिमाही में ये 145.72 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में इसमें 1% की वृद्धि हुई है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि इस साल सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज कुल देनदारी का 89.1% रहा। 30 जून को समाप्त तिमाही में यह आंकड़ा 88.3% था। इसमें कहा गया है कि करीब 29.6% सरकारी प्रतिभूतियां 5 साल से कम अवधि में मैच्योर होने वाली हैं। रिपोर्ट के अनुसार दूसरे तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने प्रतिभूतियों के जरिए 4,06,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि उधारी कार्यक्रम के तहत रकम 4,22,000 करोड़ रुपए थी। सरकार ने 92,371.15 करोड़ रुपए की रीपेमेंट की। 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारांश औसत प्रतिफल बढ़कर 7.33% हो गया। ये पहली तिमाही में 7.23% था। दूसरी तिमाही में नई जारी प्रतिभूतियों के मैच्योर होने की भारांश औसत अवधि 15.62 साल थी। पहली तिमाही में ये 15.69 साल थी। सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही में नकदी प्रबंधन के लिए अल्प अवधि की प्रतिभूतियों के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iinsatta.com पर नमस्कार।